تفسير سورة المومنون آیت نمبر 51. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایوہ الرسول کلوا من الطیبات، اے پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں، وعملوا صالحا اور عمل کرو صالح، انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے تمام پیغمبروں کو جو ہے وہ اکٹھا مخاطب کیا ہے. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ کہیں سارے پیغمبر اکٹھے کہیں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ سب کو اجتماعی ان کو خطاب کیا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ پچھلے دو رکوعوں میں مختلف انبیاء کا ذکر آیا ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے اب ان کو اجتماعی طور پر رسولوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب رسولوں کو اصولی تعلیم ایک جیسی دی گئی، تو اس لیے نچوڑ کے طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے، خلاصے کے طور پر، کہ ہر زمانے میں مختلف قوموں اور مختلف ملکوں میں آنے والے نبیوں کو اللہ نے ایک ہی ہدایت کی، وہ مختلف اوقات میں مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے پاس گئے، لیکن تمام نبی چونکہ ایک امت ایک جماعت ایک گروہ تھے تو انہیں اصولی تعلیم ایک ہی دی گئی، اور وہ کیا تھی؟ یا ایہا الرسل، اے پیغمبرو، اے رسولو. رسول واحد ہے اور رسول اس کی جمع ہے. کلو آرڈر کا صیغہ ہے، امر، کھاؤ، من الطیبات، پاک چیزوں میں سے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر طیبات جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے مراد پاکیزہ اور لذت بخش چیزیں ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد حلال چیزیں ہیں، اور دونوں باتیں صحیح ہیں، کیونکہ ہر پاکیزہ چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے، اور ہر حلال چیز جو ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہے، لذت والی ہوتی ہے. جو خبائص ہیں، جو حرام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ حرام ہے نا، جائز نہیں ہے. تو یہاں پر پہلی چیز جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ اے پیغمبرو، حلال پاک طیب چیزیں جو ہیں وہ کھاؤ. مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ چیزیں خود پاکیزہ بھی ہونی چاہیے اور حلال طریقے سے حاصل بھی کی گئی ہوں. ایسے بھی ہو سکتا ہے نا، جیسے اب مرغی ہے تو یہ حلال، لیکن اگر کوئی چوری کر لے تو یہ حرام ہو جائے گی. اسی طرح جیسے گائے کا گوشت ہے، بکرے کا گوشت ہے، تو ویسے تو یہ حلال ہے، یہ طیب ہے، لیکن اگر اس کو ذبح نہ کیا جائے اور صحیح طریقے سے جو ذبیحہ ہے وہ نہ کیا جائے تو یہ بھی حرام ہو جاتا ہے. تو چیز خود پاکیزہ ہونی چاہیے، حلال ہونی چاہیے، حلال طریقے سے حاصل کی گئی ہو، نمبر ایک. نمبر دو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رہبانیت جو ہے نا اس سے منع کیا ہے، کیونکہ کہا کہ طیب چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. جیسے بعض لوگ ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو کہا کہ نہیں، اسلام اعتدال کی طرف اشارہ کرتا ہے. نہ تو رہبانیت اختیار کرنی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ زندگی کا مقصد کھانا پینا بن جائے، تو دونوں کے درمیان معتدل جو رویہ ہے اس کو اختیار کرنا ہے. مسلمان نہ تو راہبوں کی طرح اپنے آپ کو پاکیزہ رزق سے محروم کرتے ہیں، اور نہ دنیا پرست لوگوں کی طرح حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر چیز میں منہ مارنا، ہر چیز میں منہ دینا، وہ ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا. دوسری بات کہی، وعملوا صالحا، اور عمل کرو صالح. یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ طیبات کھانے کی ہدایت کے ساتھ عمل صالح کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے. یہ آرڈر کا صیغہ ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ حرام کھانے کے ساتھ عمل صالح جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ صلاح جو ہے یا صلح سواد لامحہ، تو اچھے کو کہتے ہیں نا، صالح نیک اچھی چیز کو کہتے ہیں. تو شرط اول کیا ہے؟ کہ آدمی رزق حلال کھائے، और अमले स्वाले वो है जो शरीयत यानी कुरान और हदीस के मुताबिक हो, ना कि जिसे लोग अच्छा समझे। तो अमले स्वाले कौन सा अमल है जिसमें तीन चीजें पाई जाती हो? नंबर एक, नियत जो है वो उसके अंदर इखलास होना चाहिए, और नंबर दो कुरान के मुताबिक हो, नंबर तीन हदीस के मुताबिक हो। ये नहीं कि जिसे आपका दिल अच्छा समझता है या जिसे जमाना अच्छा समझता है, ऐसी चीजें नहीं, बल्कि ऐसी चीजें जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। और इसके साथ साथ जो है वो जब अमले सवाले करना चाहते हैं तो जरूरी है कि ये देखें कि पेट के अंदर क्या जा रहा है, जरिया मुआश क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स लंबा सफर करके गुबार आलूद और परागंदा मुंह होता है और आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआएं मांगता है, या रब, मगर हाल ये होता है कि रोटी इसकी हराम, कपड़े इसके हराम और जिस्म इसका हराम की रोटियों से पलावा हो। अब किसी तरह ऐसे शख्स की दुआ कबूल हो, अब कैसे ऐसे शख्स की दुआ कबूल हो? तो इससे ये बात पता चलती है कि ऐन दीनदारी के अंदर ये भी आता है कि आप जो हैं, आप ये देखें कि हमारे घर जो रिस्क आ रहा है हलाल आ रहा है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो अब सोसाइटी के अंदर जो है, जैसे बाज़ लोग ब्लैक मेलिंग करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, रिश्वत लेते देते हैं, सूद सूदी कारोबार है, और भी बहुत से हराम जरिए हैं वो इख्तियार करते हैं, और लोग समझते हैं कि ये मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाई जा रही है। तो ये बात सही नहीं है, बल्कि जो है वो जरिए मुआश भी हलाल होना चाहिए और हलाल तरीके से उसको जो है वो हासिल किया जाए, और वो तरीके जो कि हमें कुरान और सुन्नत से पता चलते हैं। आप अंबिया को देखें जो हमारे लिए जो है वो एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, ये सही बुखारी की रवायत है, कि वो अपने हाथ की कमाई से खाते थे। काना याकुलू मिन कसबे यदे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने बकरियां चराई हैं, मैं भी अहले मक्का की बकरियां चंद करारीत के इवज चराता रहा हूं, यानी थोड़े से मुआवजे पर जो है मैं चराता रहा हूं। ये भी सही बुखारी की रवायत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसकी बड़ी ताकीद की है और फरमाया, अल्लाह ताला हराम कमाई वाले का सदका कबूल जो है वो नहीं करता और ना ही इसकी दुआ को कबूल करता है। और इससे क्या बात पता चलती है कि रिज़्क हलाल जो है ये अल्लाह को बहुत पसंद है। और अमल करो सवाले, तुम जो कुछ भी करते हो मैं इसको खूब जानता हूँ, इन्नी बिमा तअमलूना अलीम, तुम जो कुछ भी करते हो मैं इसको खूब जानता हूँ। इससे ये बात पता चलती है कि इंसान जो है वो जो अमल कर रहा है उसकी नीयत क्या है, उसका इरादा क्या है, सारी बातें जो है वो अल्लाह के इल्म में है। फिर आयत नंबर 52 में फरमाया, वा इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतौ वाहिदतन व अना रब्बुकुम फत्तकून, और ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूं, बस मुझसे ही तुम डरो। अब आप देखें कि यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि जितने भी नबी थे और उनकी जो उम्मतें हैं, तो वो क्या है कि उन सब की शरीयत जो थी वो एक ही थी, और ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है। मुराद ये है कि रसूलों की जमात हो सकती है या हर जमाने में अहले हक की जमात, तो वो सब जो थे वो एक ही दीन पर थे। तमाम पैगम्बरों को अल्लाह ने एक ही दीन दिया, एक ही दीन बताया, और वो ये कि आदमी अल्लाह को एक अजीम हस्ती की हैसियत से माने, उससे डरने लगे, और अल्लाह का डर और अल्लाह की मोहब्बत इंसान के दिलो दिमाग पर इस तरह छा जाए कि हर अमल करते वक्त इंसान ये देखे कि मेरा रब मुझे देख रहा है और मौत के बाद जो है वो इन तमाम आमाल का हिसाब लेगा। वा इन हाजे ही उम्मतुकुम उम्मतौ वाहिदा, और तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है। वा अना रब्बुकुम फत्तकून, और मैं तुम्हारा रब हूं, बस तुम मुझी से डरो। तो असल में फत्तकून ही था, या गिर चुका है हरफ इल्लत। आयत नंबर 53 फरमाया, फतकत्तउ, फिर इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर लिया। काफ त्वा ऐन जो है इसके मानी है قطع کرنا، کاٹ لینا، پس کاٹا انہوں نے، پس پھوٹ ڈالی انہوں نے امرہم اپنے معاملے میں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر ہوا کیا، کہ یہ جو ایک دین تھا، ایک طریقہ تھا، لوگوں کو متحد ہو کر ایک جماعت بننا چاہیے تھا نا، توحید پرست ہوتے، لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے الگ الگ اپنے طریقے نکال لیے امرہم اپنے کام میں. اس کے معنی ہے کہ دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے یا اپنے دین میں انہوں نے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے جو ہے وہ کر لیے، آپس میں خود ہی اختلافات کر لیے. امرہم اپنے دین کے معاملے میں، بینہم اپنے درمیان آپس میں، زبورہ، زبورہ یہاں پہ جو ہے وہ زابا را اس کا روٹ ہے، ٹکڑے ٹکڑے، پارا پارا، اور جدا جدا کرنے کے معنی میں، جیسے زبر زبر ہوتی ہے نا الگ الگ، اسی طرح. کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے بڑی اہم حقیقت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کہ لوگوں نے جو پیغمبروں کا اصل دین تھا اسلام، اس کو اس میں ٹکڑے ٹکڑے کیے اپنی مرضی کے مطابق، اور جس کے پاس جو کچھ ہے، جو ٹکڑا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے، وہ اسی میں جو ہے وہ خوش ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ سوسائٹی کے اندر آج جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کہ لوگ جو ہیں وہ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کہتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو وہ صحیح سمجھتا ہے اور دوسروں کو جو ہے وہ باطل پر سمجھتا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ جو مختلف فرقے اور گروہ بندیاں ہیں، یہ لوگوں کے اختلافات ہیں، لیکن دین ایک تھا. امت سے مراد دین ایک تھا، سب نبیوں نے ایک اللہ کی طرف، توحید کی طرف دعوت دی، لیکن لوگوں نے توحید کو، دین توحید کو چھوڑ کر الگ الگ فرقے جو ہیں وہ بنا لیے. اور بعض گروہ ایسے ہیں جو دین سے بہت دور ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں، اس پر وہ خوش ہے. یہ وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے کہا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. آج لوگ یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کون سے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن پیچھے آپ نے سورت حج کے آخر میں بھی پڑھا کہ اللہ نے تمہارا نام جو ہے وہ مسلم رکھا. تو ہمارا قرآنی نام جو ہے، ہمارا اسلامی نام جو ہے وہ مسلم ہے. ہوا سماکم المسلمین، تو یہی ہماری پہچان ہے. فذرہم فی غمرتہم حتی حین، اچھا تو انہیں چھوڑو. فذرہم، پس ان کو چھوڑ دو، فی غمرتہم، ان کی غفلت میں، حتی حین، ایک مدت تک. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ غمرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا روٹ ہے غین میم را. مفسرین کہتے ہیں کہ غین میم را اس کے معنی ہے کسی چیز کے اثر کو زائل کر دینا، ایسی چیز کہ جیسے گہرا پانی ہوتا ہے نا، مفسرین کہتے ہیں غین میم را ایسے گہرے پانی کو کہتے ہیں جس میں آدمی ڈوب جائے، اور جو اس میں داخل ہو جائے تو اس کو بھی وہ گہرا پانی اپنے اندر چھپا لے. تو غمرہ جو ہے ہر پردہ، ہر ڈھانپ لینے والی چیز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی جو مشرکانہ جہالتیں ہیں نا، وہ ان کے لیے غمرہ ہیں. مشرکانہ جہالتوں میں ان کے دل ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا نفس ڈوبا ہوا ہے، ان کی سوچیں ڈوبی ہوئی ہیں. تو غین میم را جو ہے معنی کیا ہے، پانی کا ڈھانپ لینا. جیسے بہت سیلاب آ جائے، کثیر پانی ہو تو وہ کسی چیز کو ڈھانپ لے. تو آدمی پر جو جہالت چھا جاتی ہے نا، اس کو بھی پھر غمر کہتے ہیں. جیسے جو بہت ہی سخی ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کی سخاوت ہر چیز پر چھا جاتی ہے. اسی طرح تیز بھاگنے والے گھوڑے کو بھی غمر کہتے ہیں، کیونکہ اس کی تیزی جو ہے وہ ہر چیز پر نمایاں ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہ جو مشرکانہ حرکتوں میں ہیں، اختلافات میں ہیں، ان کو اسی حالت میں پڑا رہنے دو، حتی ہین، ایک خاص مدت تک. और मुद्दत से मुराद जो है वो वक्त है जबकि अल्लाह ताला जो है वो हिसाब किताब लेंगे। आयत नंबर 55, 55 सूरत अल मोमिनून, या सबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, क्या ये समझते हैं कि हम जो इन्हें माल और औलाद से मदद दिए जा रहे हैं तो ये क्या है, यानी आया सबूना, क्या ये गुमान करते हैं, क्या ये समझते हैं, अन्नमा नुमिद्दुहुम, इसके सिवा कुछ नहीं कि नुमिद्दुहुम कि हम इनको जो है वो ढील दे रहे हैं, हम इनकी मदद कर रहे हैं। मीम दाल दाल, किसी की मदद करना, किसी को नवाजना, तो हम इनको जो नवाज रहे हैं माल से और बेटों से, तो इसको ये क्या समझ रहे हैं, इनका क्या ख्याल है। नुसारिउ लहुम फिल खैरात, क्या हम जल्दी कर रहे हैं इनको नेकियों देने में, क्या इन्हें भलाइयां देने में हम सरगर्म हैं, बल्ला यशऊरून, लेकिन इन्हें इस बात का जो है वो शऊर नहीं है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी अहम हकीकत की तरफ इशारा किया है और वो ये है कि किसी को माल और औलाद से अगर नवाजा जा रहा है, माल और औलाद की उसके पास कसरत है, तो इसका ये नहीं मतलब कि अल्लाह ताला के हाँ वो कामयाब है कि दुनिया में जो उन्हें खुशहाली दे दी गई है, क्योंकि आमतौर पर माल और औलाद जो है वो पूरी दुनिया की खुशहाली की एक जामे जो है वो तस्वीर है, मंजर कशी है, माल हो और साथ औलाद हो। अब यहां पर फरमाया जा रहा है कि ये जो माल है वह बनीन, बनीन जो है वैसे आपको पता ही है कि इब्न बेटे को कहते हैं और ये इस्म जिन्स है, बेटियां बेटे और औलाद सबके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो है ये कामयाबी की दलील नहीं है कि किसी के पास माल और औलाद की कसरत हो, बल्कि ये कानूने इस्तदराज है, ये कानूने इम्हाल है। जैसे किसी को जो है वो फांसा जाए, दर्जा बदर्जा लोग उसके अंदर फंस जाएं और अल्लाह को और आखिरत को भूल के बस दुनिया के होके रह जाएं। नुसारिउ लहुम फिल खैरात, नुसारिउ सीन रा ऐन, ये जल्दी के लिए आता है, और तो क्या हम जल्दी कर रहे हैं इनके लिए भलाइयां देने में, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि इन्हें इसका जो है वो शऊर नहीं है, इन्हें इस बात की समझ नहीं है। तो यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि माल और औलाद की कसरत जो है वो दुनिया में किसी की कामयाबी की दलील नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक ढील है। और ढील देने का मकसद क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अल्लाह के अजाब की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्ना लजीना हुम मिन खशियत रब्बिहिम मुशफिकून, तो कौन लोग हैं जो कि नेकियों में बढ़ने वाले हैं, कौन लोग हैं जो कि अल्लाह के हाँ कामयाब हैं, बाजी जीतने वाले कौन हैं। आपने सूरत अल मोमिनून की इब्तदा में भी पढ़ा था और अब यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि हकीकी कामयाबी में जो आगे बढ़ रहे हैं, जो जल्दबाजी कर रहे हैं, वो कौन है। इन लजीना, बेशक वो लोग, हुम मिन खशियत रब्बिहिम मुशफिकून, जो अपने रब के खौफ से डरते रहते हैं। तो ये पहली सिफत है, ये हैं वो लोग जो कि नेकियों में सबकत ले जाने वाले हैं, ये हैं वो लोग जो कि भलाइयों की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे पहले लोगों को ये कहकर आयत नंबर 56 में कि माल, 56 में और 55 में कि माल और औलाद की कसरत जो है वो कामयाबी की दलील नहीं है, बल्कि ये उनका इम्तिहान ज्यादा सख्त है, क्योंकि बाज़ औकात भलाइयां इंसान उसी को भलाई समझता है लेकिन उसमें डूबकर अल्लाह को भूल जाता है। तो कहा कि ये हैं वो लोग बेशक जो डरते रहते हैं अपने रब से। अब देखें, खशियत का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा गया है और साथ ही मुशफिकून का लफ्ज भी जो है यहाँ पर आया है, और इसके मानी है कि ये अपने रब से डरते रहते हैं। पीछे आपने जो है नमाजों की सिफ्त पढ़ी थी ना, हुम फी सलातिहिम खाशिउन, तो अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो शख्स अल्लाह को इस तरह पाए कि इस पर अल्लाह की हैबत तारी हो जाए, तो वो आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान होता है। खौफ की नफसियात इसको इंतहाई हद तक संजीदा बना देती है, और ये जो संजीदगी है वो इसकी कामयाबी की जमानत बन जाती है। फिर वो क्या करता है, जैसे जो है, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में आता है कि वो लोग जो थे वो हंसते भी थे और बातें भी करते थे, लेकिन जो ईमान था वो उनके दिलों के अंदर पहाड़ की तरह गड़ा हुआ था। वो अल्लाह के खौफ जो है उससे लरजते रहते थे, रातों के वक्त वो राहे बन जाते थे, और दिल के अंदर अल्लाह का जो खौफ था, अल्लाह का जो डर था, उनके दिल के अंदर जो है वो हर वक्त जो है वो तारी रहता था। तो यहाँ पे भी ये बात बताई जा रही है कि पहली सिफत इन लोगों की ये है कि ये वो लोग हैं जो कि जिनके दिलों को धड़का लगा रहता है। किस चीज का धड़का लगा रहता है, क्यों वो जो है वो डरते रहते हैं? इसलिए कि वो हर वक्त ये सोचते हैं कि अल्लाह कहीं उनसे नाराज तो नहीं है, कहीं अल्लाह की उनकी जिंदगी में कोई नाफरमानी तो नहीं हो रही। तो हर वक्त जो है वो इस बात पर जो है वो परेशान रहते हैं। और उनकी दूसरी सिफत क्या है, वल्लज़ीना हुम बिआयात रब्बिहिम युमिनून। दरहकीकत ये वो लोग हैं कि जो अपने रब के आयात पर ईमान लाते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे दूसरी सिफत जो है वो बताई जा रही है कि वो रब की आयात पर ईमान लाते हैं। तो रब की आयात पर ईमान लाने का क्या मतलब है? इसके मानी है कि वो अल्लाह की आयात का मजाक नहीं उड़ाते, उनका इनकार नहीं करते, बल्कि वो कुरान में जो कुछ पढ़ते हैं उसको अमन्ना व सदकना कहते हैं। जो कुछ पढ़ते हैं समय नवा पाना कि वो अमली तस्वीर बन जाते हैं। तो आप देख लें कि आपका कुरान की आयात के साथ कैसा मामला है। जो अपने रब की आयात पर ईमान लाते हैं, आपने ईमान के बारे में बड़े अच्छे तरीके से ये बात पढ़ी थी कि ईमान तब्दीली का नाम है। ईमान जिंदगी में, अकीदे में, इखलाक में, सोचों में एक चेंज का नाम है, तब्दीली का नाम है। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने रब पर ईमान लाते हैं, और सिर्फ रब पर ईमान ही बल्कि उसकी आयात पर। और आयात पर ईमान लाने का मतलब क्या है कि कुरान उनका जिंदगी का दस्तूर बन जाता है। फिर देखिए आयत नंबर 59 है, तीसरी सिफत है, वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते। अब आप देखें कि यहां पर जो है वो रब के साथ किसी को शरीक करने से जो है वो मना किया जा रहा है। तो क्या है कि वो तौहीद परस्त होते हैं, वो मुशरिक नहीं होते, वो अपने नफ्स की पूजा नहीं करते, वो अपनी खानदान की रस्मों रवाज जो है उनकी पूजा नहीं करते। उनका सारा एतमाद अपने रब पर होता है और वो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। वल्लदीनहुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते। अब आप देख लीजिए कि आप क्या करती हैं। तो ये है दरअसल खशियत इलाही, ये है ईमान, ये है अल्लाह से मोहब्बत कि फिर जिंदगी में तौहीद के असरात नजर आते हैं। और आयत 60 तो बहुत ही हिला देने वाली है, वल्लज़ीना युतूना मा आतू व कुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। फिर फरमाया, और जिनका हाल ये है कि देते हैं कि जो कुछ भी देते हैं और दिल उनके इस ख्याल से कांपते रहते हैं कि हमें अपने रब की तरफ पलटना है। अब आप देखें कि अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात देना और जकात देना, ये अब अक्सर जो है वो पढ़ती रहती हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है नंबर एक कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, लेकिन दूसरी बात जो कही जा रही है कि वल्लज़ीना युतूना, के वो लोग देते हैं, मा आताऊ, जो वो देते हैं, तो देते वक्त उनके दिल की ये कैफियत होती है कि वह कुलूबुहुम वजिलतुन, और उनके दिल कांप रहे होते हैं, अन्नहुम इला रब्बिहिम राजून, कि उन्हें जो है अपने रब की तरफ पलटना है। तो क्यों उनके दिल कांपते हैं? अब खर्च कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, तो आखिर डरने की क्या बात है? मुफस्सरीन कहते हैं कि वो इसलिए डरते हैं सदका खैरात करते वक्त, ज़कात देते वक्त, कि कहीं किसी कोताही की वजह से उनका सदका जो है वो ऐसा ना हो कि अल्लाह कबूल ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं जो है वो नियत में कोई फितूर आ जाए, कोई उनसे कमी हो जाए और उनका रब जो है उनसे नाराज हो जाए। वो परेशान रहते हैं खर्च करते वक्त कि कहीं वो फखर के तौर पे तो नहीं खर्च कर रहे, कहीं नुमाइश तो नहीं उनके अंदर पाई जा रही। वो बार बार अपनी नीयत का जायजा लेते हैं कि हमें एक दिन अल्लाह के पास जाना है। तो असल में जो इनके दिलों के अंदर खौफ समाया हुआ है, क्यों समाया हुआ है? अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिउन, कि उन्हें अपने रब की तरफ पलटना है। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इसका ये मतलब है कि एक शख्स चोरी और जिना और शराब नोशी करते हुए अल्लाह से डरे? क्योंकि गुनाह करते हुए इंसान अल्लाह से डरता है ना। तो हजरत आयशा जो थी रजी अल्लाह अन्हा, या तू ना मा आताऊ के मानी ये ले रही थी कि जो भी करते हैं तो उससे डरते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं है सिद्दीक की बेटी, इससे मुराद वो शख्स है जो नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, जकात देता है, फिर अल्लाह इज्जो जल से डरता है। इसके फिर मानी क्या है कि ये जो यू तू नऊ जो है, इसके मानी सिर्फ माल देना नहीं है, बल्कि मुफस्सरीन ने इसके मानी जो है वो अतात करने के मानी में लिए, वसी मानी है इसके, कि वो सदका खैरात करते हैं, जो भी अतात करते हैं वो अल्लाह से डरते रहते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह नो की जिंदगी भर ये कैफियत रही ईमान लाने के बाद, कि आप देखें उनकी जिंदगी भर की खिदमात, जिंदगी भर की खिदमात, के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर कहा था कि अगर मेरे बाद कोई पैगंबर आता तो उमर फारूक होते। फिर एक दिन कहने लगे, औरतें जो थी वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल जवाब पूछ रही थी, आप जवाब दे रहे थे और बड़े आराम से पूछ रही थी। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उमर फारूक रजी अल्लाह ने आए, उनका पता चला, औरतें भाग भाग कर छुपने लगी। तो इस पर कुछ लोग हंसने लगे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब यानी इन पर क्यों हंसते हो उमर, तुम उमर की बात करते हो? उमर तो जिस रास्ते से गुजरता है शैतान भी डर कर वो रास्ता छोड़ देता है। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जो है, जो कि इतने अच्छे ईमान वाले थे, जिनके ईमान लाने से इस्लाम मजबूत हो गया, मैं अक्सर उनसे इतनी मुतासिर होती हूँ सहाबा के मुख्तलिफ रवैयों से, किरदार से, कि जब वो ईमान लाए तो वो डरे हुए और छुपे हुए नहीं थे। हालांकि मक्की दौर जुल्म-ओ-सितम का दौर था मुसलमानों के लिए, जुल्म की चक्की मुसलमान पिसे जा रहे थे, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ईमान लाए तो उन्होंने सोचा कि कौन है जो मेरी इस बात का ऐलान करे कि उमर मुसलमान हो गया। तो मक्का में एक आदमी था और वो क्या करता था कि किसी का पता चल जाता ना किसी बात का, तो वो ढोल लेकर ढोल पीटता था। हजरत उमर उसके पास गए और उसको जाकर कहा कि ए फलां, तुझे पता चला? कहने लगा, बड़ा वो खुश हुआ कि भी हजरत उमर आए हैं, बहादुर भी बड़े थे, दलेर भी बड़े थे। तो कहने लगे कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि सुन ले कि उमर मुसलमान हो गया। और अब वो शख्स ने ढोल पीटना शुरू किया और मक्का की गली में चल रहा था और कह रहा कि लोगों सुनो, उमर साबी हो गया, यानी दीन से फिर गया। हजरत उमर साथ साथ कहते जा रहे थे कि लोगों सुन लो कि उमर जो है वो ईमान ले आया है। तो इस तरह उन्होंने अपने ईमान लाने का ऐलान किया था, देखें, और कितनी जुर्रत के साथ उन्होंने ऐलान किया था ना कि लोग उनसे डरते थे। लेकिन सारी जिंदगी की जो उनकी खिदमात हैं, उसके बाद जब दुनिया से रुखसत होने लगे तो कहते थे कि अल्लाह के मुहासबे से डर लगता है। कहते थे अगर आखिरत में बराबर सराबर भी छूट जाऊं तो गनीमत है। और कहते थे कि अगर आसमान से आवाज आए कि सारे लोग जन्नती हैं, बस एक है जो जहन्नुम में जाएगा, तो सोचता हूँ कहीं वो उमर ही ना हो। और ये भी कहते थे कि अगर आसमान से ये आवाज आए कि सारे लोग जो हैं वो जहन्नमी हैं, बस एक जन्नत में जाएगा, तो सोचता हूँ हो सकता है कि वो जो है वो उमर ही हो। तो उनका ईमान जो था वो खौफ और उम्मीद के दरमियान में था, इसी को ईमान कहते हैं, कि ना इतने जो है वो खौफ ज्यादा हों कि डिप्रेशन में चले जाएं, और ना इतने पुर उम्मीद हों कि अपनी गलतियां और कोताहियां जो है उसके बारे में परेशान ही ना हो। तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि वो डरते रहते हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मोमिन अतात करता है फिर भी डरता रहता है, और मुनाफिक नाफरमानी करता है फिर भी बेखौफ रहता है। फिर आयत नंबर 61 में फरमाया, उलाइका युसारिउना फिल खैरात, कि ये हैं वो लोग जो कि नेकियों में सबकत ले जाने वाले हैं। वहुम लहा साबिकून, और फरमाया कि इनके लिए जो है वो सबकत ले जाना है, इनके लिए फिर आगे बढ़ना है। तो जिनके अंदर ये सिफात पाई जाएंगी तो यही है वो लोग जो कि नेकियों में आगे बढ़ने वाले हैं, और ये हैं जो इन नेकियों के लिए वहुम लहा और इन नेकियों के लिए साबिकून आगे निकल जाने वाले हैं। तो प्यारी बहनों, अगर दौड़ लगानी है, अगर आगे बढ़ना है, अगर रीस करनी है, अगर भागना है, तो आइए नेकियों में दौड़ लगाएं, आइए नेकियों में मुकाबला करें, उसमें रेस लगाएं। और सहाबा सारी जिंदगी नेकियों में दौड़ लगाते रहे। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह नो जो है वो बड़ी हसरत से ये कहा करते थे कि जो है कि वो चाहते थे कि किसी तरह अबू बकर से आगे निकल जाए ना, लेकिन कहते थे कि मतलब अबू बकर से जो है वो आगे निकलना बड़ा ही मुश्किल है। और गज़वे तबूक के मौके पे सोचने लगे कि अब मैं माल ज्यादा दूंगा और इस दफा अबू बकर से आगे निकलूंगा, लेकिन वो आधा माल लेकर आए थे। हत्ता कि जूता होता है ना, दो पाँव में डालते हैं, एक पाँव का लाए थे, एक घर छोड़ आए थे। यानी आप देखें कैसा जो है वो दीवानगी थी। और वहां आके देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह नो आज भी सबसे जो है वो आगे निकल गए ना। तो वो सिद्दीक थे, वो आगे निकलने वाले थे, वो सबकत ले जाने वाले थे। तो आइए आज से ये अमल का उसूल लेते हैं कि हमें जो है वो नेकियों में सबकत ले जाना है। जैसे आमतौर पे आप क्या करती हैं, मैं क्या करती हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा उसके पास तो सोने का जेवर है, सेट है, मेरे पास तो है नहीं। फिर बैठे हुए आंसू बहा रहे होते हैं, अच्छा मेरे पास चिकन का सूट तो है लेकिन सितारे वाला नहीं, आजकल सितारों वाला चला गया। मेरे पास चिकन का है तो सही, वो आजकल वो जो रिबन की पट्टी लग रही है ना, वो मेरे पास नहीं है, लंबा नहीं है और आजकल के फैशन के मुताबिक नहीं है। फिर क्या होता है, गमजदा होने लगते हैं। बहुत से कपड़े होते हैं और आप देखें कि फैशन तो बदलते रहते हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। और लेकिन जो हमारे पास जो भी कपड़े हैं, जो भी चीजें, अल्लाह इनके बारे में हमसे जरूर पूछेगा ना। तो जो कुछ भी हमारे पास हो, हमें उसको एतमाद के साथ, शौक के साथ और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बात बर्तन की हो, बात कपड़ों की हो, बात जेवर की हो और कुछ भी हो, तो लेकिन जिस चीज में हमें मुकाबला करने चाहिए वो नेकियां हैं। और अपना अब हाल क्या है, आपका हाल क्या है, क्या आप अपना जायजा लेती हैं कि अब आपके दिल की कैफियत क्या होती है कि लोगों के तो लोगों को माल और दौलत में जब आगे बढ़ा हुआ आप देखते हैं तो क्या दिल टूटने लगता है, दिल डूबने लगता है, दिल में चुभन होती है, दिल जख्मी जख्मी होता है, आंखों से आंसू बहते हैं, आप बस वही दिल नकद खो के बैठ जाती हैं? या मतलब ख्याल इंसान को आता है क्योंकि ख्याल इंसान है ना, लेकिन आप उसको झटक कर फौरन जो है वो नेकी के कामों में दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं? तो ये है जो असल मायार है कि उसमें वो आगे बढ़ते हैं। वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, फरमाया कि हम किसी शख्स को उसकी कुदरत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। यहाँ पर जो है वो बड़ी अहम हकीकत जो है वो कही जा रही है। अब देखिए पीछे क्या कहा गया, फलाह पाने के औसाफ बताए गए, सिफात बताई गई और साथ ही ये भी बताया गया कि भलाइयां लूटने में, नेकियां करने में आगे बढ़ना है। और जो भलाइयां लूटते हैं और नेकियों में आगे बढ़ते हैं उनकी ये सिफात होती हैं। साथ ही अल्लाह ताला ने कहा कि तुमसे किसी ऐसी चीज का मुतालबा नहीं किया जा रहा कि जो तुम कर ना सको, जो तुम्हारे लिए मुश्किल हो, नामुमकिन हो, बल्कि यानी ऐसा नहीं है कि तुम ये उधर पेश करो कि मैं ये कर ही नहीं सकता था जो अल्लाह ताला ने मुझसे कहा, जो अल्लाह ताला ने मुझसे चाहा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो है अल्लाह किसी भी नफ्स पर उसकी वुस्त से बढ़कर जो है वो बोझ नहीं डालता। तो अल्लाह के दीन पर अमल करना ये इंसानी दस्तरस में है। अब आप देखें कि गैर मामूली हालात में, अहकाम में तो अल्लाह तब्दीली कर देता है। मसलन मुसाफिर है तो नमाज में आप कसर कर सकती हैं, ये अल्लाह का इनाम है। आप जमा सलातुल बैन कर सकती हैं, दो नमाजों को जमा कर सकती हैं, जैसे जोहर और असर को, मगरिब और इशा को, है ना। और इसी तरह जो है पानी मौजूद नहीं है तो आप तयम्मुम कर सकती हैं। तो अल्लाह ताला ने दीन जो है उसको ऐसा रखा है कि इंसान उस पर जो है वो अमल कर सकता है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इंसान कर ना सके या जिस पर चल ना सके। फिर फरमाया कि वलदैना किताबुन, और हमारे पास एक किताब है, यंतिकु, नून का काफ जो है इसके मानी होते हैं कि बोलना, नुत्क, जैसे इंसान जो है वो बातें करता है ना, तो नुत्क। तो यंतिकु जो बोलती है, बिलहक की, ठीक ठीक, यानी जो हक के मुताबिक बोलती है, वहुम ला युज़लमून, और लोगों पर जो है वो जुल्म नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है कि इंसान जो है वो जो अमल भी करता है तो अल्लाह ताला को इंसान के इन अमाल की खूब अच्छी तरह जो है वो खबर है। क्यों? अल्लाह के पास जो है एक किताब है, नामे अमाल का एक रजिस्टर है, दफ्तर है, जो ठीक ठीक सबका हाल बताएगा कि किसने क्या अमल किया था, किसने कौन सा अच्छा किया था, किसने कौन सा बुरा किया था, फिर उसके मुताबिक जो है वो जजा और सजा जो है वो दी जाएगी। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अल्लाह ताला किसी पर जो है वो ज्यादती करने वाले नहीं है। फिर फरमाया आयत नंबर 63 में, बल कुलूबुहुम फी गमरतिन, बल्कि इनके दिल जो हैं वो डूबे हुए हैं। गए निमरा ऐसे गहरे पानी को कहते हैं जिसमें आदमी डूब जाए और जो इसमें दाखिल हो जाए वो उसको अपने अंदर छुपा ले। तो गमरा, तो यहाँ पर भी ये बात बताई जा रही है कि इनकार और कुफर करने की वजह से ये लोग जो हैं ये डूबे हुए हैं। किसमें डूबे हुए हैं? अपने गुनाहों में, मुशरिकाना अमाल में, यानी इनके दिल डूबे हुए हैं मुशरिकाना अमाल में। तो मुशरिकाना अमाल को भी गुमराह कहा जाता है, मुशरिकाना जहालत। तो मुशरिकाना जहालत की वजह से ये लोग जो हैं फिर इस बात की हकीकत को समझते ही नहीं है। तो इनके दिल जो हैं वो गमरतिन गफलत में है, मिनहाजा इस तरफ से, वलहुम आमालुम मिन दूने जालिका हुम लहा आमिलून, और इनके लिए अमाल हैं इसके सिवा और वो उसके लिए अमल करते हैं। तो चूंकि ये लोग जो हैं ये मुशरिकाना अमाल में डूबे हुए हैं, ये अपने ये जो काम कर रहे हैं मुशरिकाना काम, तो इसलिए ये पीछे आपने इनका पढ़ा ना जिक्र, जो कुफर का, शिर्क का, और जो उनका झगड़ना था उनका पीछे आपने सारा जिक्र पढ़ा। यहाँ पे उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है और इनके अमाल भी उस तरीके से मुख्तलिफ हैं। वलहुम आला आमालुम मिन दूने जालिक, तो इनके ये जो अच्छे औसाफ है ना, जो नेक लोगों के, वो इनके औसाफ नहीं है। ये जो अच्छे औसाफ का जिक्र किया गया है, इन लोगों के औसाफ इससे मुख्तलिफ हैं और वो अपने करतूतों में मसरूफ है। बल कुलूबुहुम फी गमराते मिन हाजा, ये अच्छे औसाफ से इनके दिल गफलत में हैं, वलहुम आमालुम मिन दूने जालिक, और इनके अमाल इन औसाफ से हटकर हैं, परे हैं, हुम लहा आमिलून, बस ये यही करते जा रहे हैं जो कि कर रहे हैं। हत्ता इजा अखजना मुतरफीहिम बिल अजाबी इजा हुम यज अरून, यहां तक के जब हम इनको पकड़ेंगे, मुतरफीहिम इनके जो मालदार लोग हैं, इनके जो खुशहाल लोग हैं। मुतरफीन का लफ्ज आप पहले भी पढ़ चुकी हैं और इसके मानी होते हैं जो अमीर लोग होते हैं, जो खुशहाल लोग होते हैं। ता राफा इसका रूट है और इसके मानी होते हैं खुशहाली के। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं कि जब हम पकड़ेंगे मुतरफीहिम इनके खुशहालों को, बिल अजाबी अजाब के साथ, हम इनके अय्याशों को जब अजाब में पकड़ेंगे तो हाल क्या होगा? इजा हुम यज अरून, तो फिर इस वक्त वो डिगराना शुरू कर देंगे। ये यज अरून जो है ये अहम लफ्ज है और ये लफ्ज जो है आप देखें तो आपके लिए ये बिल्कुल नया लफ्ज है, यज अरून, और इसका रूट है जीम हमजा रा, इसके मानी है चीख पुकार करना। हिरन जो है जब घबराया हुआ होता है, जैसे उसको कोई पकड़ रहा है, उसके पीछे कोई भाग रहा है, तो हिरन घबराहट के वक्त जोर से आवाज निकालता है, चीखता है और फरियाद करता है। तो इस तरह तशबीह के तौर पर जो है ये लफ्ज गिरियाजारी करना, तजर्रोजारी करना और फरियाद करना, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है कि जब अल्लाह इनके अमलों पर इनको पकड़ेगा, जब अल्लाह जो है अजाब इन पर जो है वो नाजिल करेगा, तो देखिएगा कि उस वक्त ये लोग जो है ये फरियाद करने शुरू कर देंगे, डिगराना शुरू करेंगे। और मुफस्सरीन कहते हैं हिरन के अलावा, जैसे बैल है ना, बैल की भी उस आवाज को कहते हैं जो सख्त तकलीफ के वक्त वो निकालता है। तो मानी क्या है, फरियाद करना। यानी अब ये दुनिया में तो बड़े कुफर कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो है ये क्या करेंगे, जैसे बैल जानवर है ना उसकी तरह फरियाद करेंगे। हिरन जैसे अपनी जान से जब खौफजदा होता है कि कोई मेरे पीछे है, मुझे पकड़ना चाह रहा है और चीख मार रहा होता है, फरियाद कर रहा होता है, तो उस दिन ये लोग चीखे मार रहे होंगे, ला तज अरुल यौम, आज तुम जो है वो फरियाद मत करो, बंद करो अपनी फरियाद, बंद करो अपनी उस आवाज को जो तकलीफ है तुम निकाल रहे हो, इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, अब हमारी तरफ से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, तुनसरून जो है तो आज हमारी तरफ से तुम कोई मदद नहीं किए जाओगे। और आयत नंबर 66 बहुत ही डराने वाली है, कद कानत आयाती, तहकीक आई थी तुम्हारे पास, आयाती मेरी आयात, कद कानत तहकीक थी आयाती मेरी आयात, तुतला अलैकुम तुम पर तिलावत की जाती, तुम्हें मेरी आयात सुनाई जाती थी, फकुन तुम अला आकाबेकुम तन किसून, और तुम जो है रसूल की आवाज सुनते ही, तुम जो है वो आयात सुनते ही क्या करते थे, अला आकाबेकुम अपनी एड़ियों के बल, अपने पाओं के बल उल्टा, तन के सून फिर जाते थे, भाग निकलते थे। तो ऐन काफ बा जो है अकब एड़ी को कहते हैं, अकाब उसकी जमा है, और अला अकाब के माने क्या होते हैं, उल्टे उल्टे पाओ, तो तुम उल्टे पाओ क्या करते थे, तन के सून तुम उल्टे पाओ जो थे वो भागने लगते थे। और नून काफ स्वाद जो है इसके मानी है कि किसी चीज से पीछे हटना, उल्टे पांव भागना, तो तुम जो है अल्लाह के रसूल की बात सुनकर उल्टे पांव जो थे वो लौट जाते थे। तो यहाँ पे ये जो है वो इस्तियारा है, मानिए रूगरदानी करना, एराज करना, अल्लाह की आयात अल्लाह के अहकाम सुनकर तुम मुंह फेर लेते थे, तुम उनसे भागते थे, तो वो दिन तुम भूल गए और आज तुम फरियाद कर रहे हो। आज अल्लाह के अजाब की एक चोट ने तुम्हें, तुमने क्या किया कि तुमने डिगराना शुरू कर दिया, मुस्तकबिरीन, तुम क्यों भागते थे, घुमंड, ये बहुत डरावनी बीमारी है, बड़ी सख्त बीमारी है, यही शैतान को थी। और आज जो लोग कुरान का इनकार करते हैं वो भी इसी बीमारी के अंदर जो है वो मुब्तिला रहते हैं। तो तुम कुरान से अल्लाह की आयात से तकब्बुर करते थे, क्या वजह थी कि तुम जो थे अपने आप को बड़ा समझते थे और अल्लाह के अहकाम के आगे झुकते नहीं थे। मुस्तकबिरीना वही सामिरन, सीन मीम रा जो है इसके मानी होते हैं रात की गुफ्तगू, रात के वक्त बातचीत करना, गप्पे हांकना, किस्से कहानियां कहना। देहाती लोग क्या करते थे कि चौपालों में बैठकर गप्पे मारा करते थे, और यही अहले मक्का का दस्तूर भी था। तो कुरान सुनने की बजाय, कुरान पढ़ने की बजाय, उस पर अमल करने की बजाय तुम्हारा हाल ये था कि तुम जो है वो बैठकर सामिरन किस्से कहानियां सुनाते थे, अफसाने सुनाते थे, गपशप करते रहते थे। और आप देख लें कि कुरान जैसी अजीम किताब आज मुसलमानों के पास है, आपके पास है, और उसकी मौजूदगी में आज का मुसलमान क्या करता है, आप अपना मुहासबा करें, क्या करते हैं, क्या दिलचस्पियां होती हैं, फोन, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और चैटिंग, कंप्यूटर, टीवी, नावल, अफसाने, गपशप, इधर उधर की बातें, और कुरान को नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरी दिलचस्पियों से फुर्सत ही नहीं मिलती, दूसरी महफिलों को छोड़ते ही नहीं है ताकि कुरान की तरफ जो है वो रुजू किया जा सके। तो यहाँ पे उस जमाने के जो लोग हैं उन पर अल्लाह ताला गिरफ्त कर रहे हैं, और साथ ही आप अपना मुहासबा करें कि आप क्या करते हैं। मुफस्सरीन कहते हैं सीन मीम रा जो है ये चांदनी रात के भी इसके मानी होते हैं, और अहले अरब की आदत थी कि चांदनी रात में बैठकर किससे कहानियां सुनाया करते थे, तो चांदनी रात चांद की रोशनी के लिए भी सीन मीम रा आता है, तो उसी से जो है ये लफ्ज रात को बैठकर किससे कहानियां सुनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ये था अहले मक्का का हाल। तो एक उनकी कैफियत क्या थी कि उल्टे पहुंच जाते थे, उल्टे पांव कुरान सुनकर भागते थे, दूसरी उनके अंदर किबर था, तीसरी क्या थी कि कहानियों से किस्सों से फजूलियात से दिल लगाया हुआ था, चौथी क्या थी ताहजुरून। हा जीम रा जो है अगर हा के ऊपर पेश हो तो इसके मानी होते हैं फजूल बकवास, गाली गलोच। सी यानी हा जीम रा हुजर जो हो ना, तो इसका मतलब होता है कि बेहुदा बातें करना, फोहश बातें करना, गाली गलोच करना। और अगर हा जीम रा है और हा जो है इसके नीचे जेर है हिजर, तो इसका मतलब है दूरी, यानी कुरान से तुमने दूरी इख्तियार कर ली। और अगर हा पर पेश रखकर आप पढ़ेंगे तो माने क्या है कि कुरान से, कुरान को छोड़कर तुम क्या कर रहे थे, तुम फजूल बातें और गाली गलोच में मसरूफ थे, तुम अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और कुरान की शान में गुस्ताखी करते थे। तो इस तरह आप देखें कि इनकार करने वालों के कितने औसाफ सामने आ रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जो अब फरियाद कर रहे हैं कि अल्लाह की पकड़ से उन्हें बचाया जाए। अफलम यदब्बर अल कौल अम जाअहुम मा लम याति आबाउहुमुल अव्वलीन। तो क्या इन लोगों ने कभी इस कलाम पर गौर नहीं किया? यद्दबरु दाल बारात दुबर पीठ के लिए भी आता है, और किसी चीज के जो है वो अंजाम पर गौर करना, तदबीर भी होती है ना, तो आने वाले वक्त में क्या होगा कि उसकी कुछ तदबीर की जाए। तो यहाँ पर जो है ये पूछा जा रहा है कि क्या इन्होंने अलकौला यानी इस कुरान पर यद्दबरु गौर नहीं किया, अंजाअहुम्मालम याति आबाअहुमुल्लवलीन। क्या इनके पास कोई ऐसी बात आई है जो इनके अबाओ अजदाद के पास नहीं आई थी? क्या वजह है? यानी क्या, या नंबर एक तो ये हो सकता है कि क्या ये इस कुरान पर गौर नहीं करते, नंबर दो या वो कोई कुरान यानी कुरान जो अल्लाह के रसूल ने पेश किया है, या कोई ऐसी बात पेश की है जो कभी इनके असलाफ के पास नहीं आई थी, नंबर तीन अमलम यारिफू रसूलहुम, या ये अपने रसूल से कभी वाकिफ ही नहीं थे, यानी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें जो है वो रसूल मुकरर किए जाने से पहले ये अमीन और सादिक के नाम से पहचानते थे, तो अब इतने ज्यादा जो उनके मुखालिफ हैं, तो क्या प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जानते ही नहीं थे? हम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून, के ये जो है वो अपने रसूल को पहचानते ही नहीं है, उससे भिदकते हैं। हम यकुलूना बिही जिन्ना, ये तो इस बात के कायल हो गए हैं, ये तो कहते हैं कि इसे जुनून है। पहले मक्का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते थे कि आप तो मजनू हैं, क्योंकि वलीद बिन मुगीरा ने कहा था कि हमने जो है वो मजनू देखे हैं जो उल्टी सीधी हरकत करते हैं, ये शख्स मजनू नहीं हो सकता। लेकिन अहले मक्का ने जो है वो क्या किया कि आप पर जुनून का जो है वो इल्जाम लगाया था। बल जा अहुम बिल हकी, नहीं बल्कि वो हक लाया है। वह अक्सर हम लिल हक की कारहून, और अक्सर लोगों को हक की अक्सरियत जो है वो नागवार है, कराहत करना, नापसंद करना। बलविता बल हकु अहुआ अहुम, और अगर कहीं रसूल जो थे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तबा किया होता, बला विता बल हकु अहुआ अहुम। अब यहां पे अल्लाह ताला कहते हैं और अगर हक इनकी ख्वाहिशात की इत्तबा करता, यानी यहाँ पे अलहक से मुराद कौन है कि अगर हक जो है वो इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करता, तो इसके मानी ये हैं कि जिस तरह से वो लोग ये चाहते थे कि जो कुछ वो चाहते हैं बस उसके मुताबिक ही जो है वो सारा कुछ होना चाहिए, तो अब यहाँ पर जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुरान जो कुछ पेश कर रहा है वो असल में हक है, रसूल जो कुछ पेश कर रहा है वो है असल में हक। तो कुरान जो है या रसूल का जो पेश किया जाना है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो कुछ ये चाह रहे हैं उसके मुताबिक वो पेश किया जाए। तो अगर हक इनकी ख्वाहिशात के पीछे चलता, यानी जो कुछ ये चाहते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बात पेश कर देते, कुरान में वही आयात होती जो कुछ वो चाहते थे। ऐसे नहीं हो सकता कि इनकी ख्वाहिशात के जो मुतालबात हैं तो कुरान इस्लाम रसूल उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दे। अगर ऐसा हो जाता ला फसादतिस समावात वल अर्दु व मन फीहिन, तो जमीन और आसमान और इनकी सारी आबादी का निजाम धर्म भरम हो जाता, तो उसमें फसाद पैदा हो जाता, आसमान और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है। बल आतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फहुम अन ज़िक्रिहिम मोरिदून, नहीं बल्कि हम इनका अपना ही जिक्र इनके पास लाए हैं, اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بل آتیناہم بذکرہم کہ ہم ان کا ذکر ان کے پاس لائے ہیں, اس کے معنی کیا ہیں؟ تو زال کا فرا جو ہے اس کے ایک معنی نصیحت کے ہیں, اور اس کے ایک معنی جو ہے کہ جو دین پیش کیا جا رہا ہے یہ بڑا فطری دین ہے, اور یہ بڑا ہی جو ہے معزز دین ہے کہ لوگ اگر اس کے مطابق چلیں گے تو انہیں بڑی عزت نصیب ہوگی. تو جو دین انہیں پیش کیا جا رہا ہے, بلکہ ہم ان کا اپنا ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور یہ لوگ ہیں کہ اس ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. ام تسألهم خرجن, کیا تم ان سے کچھ مانگ رہا ہے, کیا آپ ان سے کچھ مانگ رہے ہیں؟ خرجن جو ہے جیسے خراج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ سوالیہ انداز میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ ان لوگوں سے جو دین پیش کر رہے ہیں تو کوئی مال مانگ رہے ہیں کہ یہ ایسے کرتے ہیں؟ فخراج ربی کا خیر, تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہتر ہے. تو آپ جو ہے آپ کے لیے آپ کے رب کا دیا ہوا بہتر ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے کوئی اجرت نہیں مانگتے تھے, اور وہ تو بار بار کہتے تھے کہ میرا اجر میرے اللہ کے ذمہ ہے. تو یہاں پہ بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ ان سے کوئی تنخواہ نہیں مانگتے, کوئی مزدوری نہیں مانگتے, تو کیوں انکار کرتے ہیں؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہوا بہتر ہے, وہ خیر الرازقین, اور وہ بہترین رازق ہے, بہترین رزاق ہے. تو حقیقت بھی اصل میں یہی ہے کہ اللہ تعالی کے پاس جو کچھ ہے تو وہی جو ہے ہماری زندگی کے اندر خیر لا سکتا ہے, بہار لا سکتا ہے, اور ہمیں اسی پر جو ہے وہ قناعت کرنی چاہیے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کا جو زاد راہ ہوتا ہے وہ اللہ پر توکل ہوتا ہے, اور نبی جو ہے وہ اللہ سے لو لگاتا ہے, اور مفت میں انہوں نے دین لوگوں کو سمجھایا, اور افسوس کے لوگوں نے نبی کی قدر ہی نہیں کی. اور نبی کوئی تاجر تھوڑی تھے, کوئی دکاندار تھوڑی تھے, وہ تو ایک دائی حق تھے, اور بس اپنی دعوت کو اللہ کے بھروسے پر جو تھے وہ پیش کر رہے تھے. اور کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں, کیونکہ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہتر ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے, بے شک آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف, توحید کی طرف, دین کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, مگر وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے, اس کا انکار کرتے ہیں, عَنِ الصِّرَاطِ, تو راستے سے, وہ راہ راست سے, لناکبون, ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ لناکبون لفظ جو ہے یہ استعمال کیا گیا ہے, اس کا روٹ ہے نون کاف با, اور نون کاف با کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز سے پھر جانا, مڑ جانا. اور جیسے ہمیں قرآن میں ملتا ہے نا کہ زمین جو ہے اس کے راستوں پر چلو, فمشو فی مناکبہا, تو جیسے اس کے مونڈوں پر چلو اور اس کے راستوں پر چلو, تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ آخرت سے, آخرت کے راستے سے ہٹ رہے ہیں, الگ ہو رہے ہیں, صراط مستقیم کو چھوڑ کر جینا چاہتے ہیں. اب آیت نمبر جو 75 ہے, کہتے ہیں کہ اہل مکہ کی اس تکلیف اور مصیبت کی طرف اشارہ ہے جب وہ قحط میں پڑے ہوئے تھے, اور اہل مکہ جو ہے وہ قحط میں مبتلا ہوئے, ایک دفعہ نبوت کے آغاز سے کچھ مدت بعد اور دوسرا ہجرت کے کئی سال بعد. تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت قبول کرنے سے مسلسل انکار کیا اور سخت جو ہے وہ مزاحمت شروع کر دی, تو رسول اللہ نے دعا کی, خدایا ان کے مقابلے میں میری مدد یوسف کے 7 سالہ قحط جیسے سالوں سے کر. ایسا قحط شروع ہوا کہ مردار تک کھانے کی نوبت آ گئی. تو یہاں پہ بھی اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ, اور اگر ہم ان پر رحم کریں, وَكَشَفْنَا, اور ہم ہٹا دیں, مَا بِهِمْ مِنْ دُرِّن, کہ جس یہ تکلیف میں مبتلا ہیں, جس تکلیف میں یہ آج مبتلا ہیں, در یعنی اس تکلیف کو, اس قحط کو اگر آج ہم ہٹا دیں, دور کر دیں, لَلَجُّ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, تو لَلَجُّ, پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اڑے پڑے ہیں. لام جیم جیم, اس کا مطلب ہے کہ اڑنا, جیسے اگر کسی کو کسی کام سے منع کیا جائے تو وہ اس پر ضد کرے, तो ममनू काम पर जो है वो जम जाना, जिद करना, तो उसको लज कहते हैं। तो फरमाया कि ये लोग जो है अपनी सरकशी में जो है वो अड़े हुए हैं, या महून बहके हुए हैं। आयन मीम हा, और आयन मीम हा जो है ये दिल के अंधे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बिल्कुल ही गाफिल हैं। वलकद अखजनाहुम बिल अजाबी, और इनका हाल क्या है कि जब हमने इनको पकड़ा अजाब में, फमस्तकानू लिरब्बिहिम, तो फिर भी ये अपने रब के आगे नहीं झुके। क्योंकि आमतौर पर जब किसी पर मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो लोग क्या करते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। मुसीबत, परेशानी, दुख, तकलीफ में अल्लाह की तरफ रजू करते हैं, लेकिन ये ऐसे बदकिस्मत है कि फिर भी ये अपने रब के सामने नहीं झुके। वमा यतदर्रउन, और ना ही इन्होंने जो है वो आहुजारी की। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि कहत की मुसीबत पड़ने पर इन बदबख्तों को अल्लाह के आगे सर झुकाना चाहिए था, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। फमस्तकानू लिरब्बिहिम, नहीं इन्होंने अल्लाह की अतात इख्तियार की। वमा ये तदर्राउन, और ना ही अल्लाह की तरफ जो है वो झुके, ना ही अल्लाह के लिए आजजी इख्तियार की, जारी इख्तियार की। हत्ता इजा फताहना अलैहिम बाबन जा अजाबिन शदीदिन इजा हुम फीही मुबलिसून, नौबत यहां तक पहुंच गई कि अगर अब भी हम इन पर जो है वो सख्त अजाब का दरवाजा खोल दे, तो तुम देखोगे कि अचानक ये इस हालत में हर खैर से जो है ये मायूस हो जाएंगे। अब यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अगर इन पर जो है वो अल्लाह अपने अजाब का दरवाजा खोल दे, तो क्या करेंगे कि अल्लाह से बिल्कुल ही मायूस हो जाएंगे। मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है अजाबे शदीद का, तो अजाबे शदीद के दरवाजे खोल देना, इसके माने क्या है कि जब कोई कौम जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का और अल्लाह की किताब का इनकार करती है और जिद करती है, तो फिर ऐसी कौम के लिए उम्मीद के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं, तमाम सहारे खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पे उसी का जो है वो जिक्र किया जा रहा है कि अगर अल्लाह का अजाब इन पर आ जाए, तो इनके लिए उम्मीद के तमाम दरवाजे जो है वो बंद हो जाए। इज़ाहुम फीही मुबलिसून, इब्लीस बालामसीन, इसका मतलब है इंतहाई मायूस। तो मुबलिसून, तो उस वक्त ये हर खैर से मायूस होंगे। वहुवल्लज़ी अनशा लकुम अस्समा वल अबसार वल अफ़ीदा, वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें सुनने और देखने की कुव्वतें दी, वल अफ़ीदा, और तुम्हें सोचने वाले दिल दिए। और जैसे फुआद है ना, जमा और अफ़ीदा जो है ये दिल को कहते हैं, वाहिद है, और दिल कल्ब भी आता है दिल के लिए, कुलूब कल्ब, लेकिन अफिदा या फुआद दिल का वो हिस्सा होता है जो मेदे के बिल्कुल मुंह पर, और कहते हैं कि सोचने के मरकज के लिए, महसूस करने के मरकज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कलीलम्मा तशकुरून, मगर तुम लोग कम ही शुक्र गुजार होते हो। मुफस्सरीन कहते हैं कि ये समात, बसारत और उलूब जो हैं, ये वो सेंसेस हैं, ये इल्म के वो रिसोर्सेज हैं कि अगर इंसान इनका सही इस्तेमाल करे तो वो हदायत को पा ले, यानी खुले कानों से दलाइल को सुनना तो इंसान हक को पहुंच सकता है, और खुली आंखों से अगर हक का मुशाहिदा किया जाए, कुरान की आयात का, कायनात की निशानियों का, तो इंसान तौहीद परस्त बन सकता है। इसी तरह बगैर तासुब के दिल से अगर सोचा जाए, दिल से अल्लाह की आयात को महसूस किया जाए, गौर किया जाए, तो इंसान जो है वो सिराते मुस्तकीम पर चल सकता है। लेकिन अफसोस किस बात का है, ये कलीलम्मा तशकुरून इजहार है हसरत और अफसोस का। यहाँ पे हसरत के लिए, अफसोस के लिए जुमला इस्तेमाल किया गया कि अफसोस कि तुम अल्लाह की बख्शी हुई नियमतें पाकर बहुत ही नाकदरी करते हो, बहुत कम कदर करते हो। तो शुक्र की असल हकीकत क्या है कि इंसान अल्लाह की नियमतों से सही फायदा उठाए और अपने रब का मुती हो, अतात गुजार हो। कलीलम्मा तशकुरून, मगर तुम लोग कम ही शुक्र गुजार होते हो। मुझे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह का एक जमाने का वाकया बड़ा ही मुतासिर करता है। अक्सर मैं सोचती हूँ कि एक दफा वो भी तवाफ कर रहे थे हजरत उमर रजी अल्लाह, और एक बद्दू तवाफ कर रहा था और वो दुआ कर रहा था तवाफ करते हुए कि अल्लाह तू मुझे थोड़े लोगों में शामिल कर ले। हजरत उमर बड़े हैरान हुए, कहने लगे ना मैंने कुरान में कोई ऐसी दुआ पढ़ी है ना ही हदीस में, तो ये दुआ तुमने कहाँ से मांगनी शुरू की। तो उन्होंने बद्दू ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपने ये नहीं सुना कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे थोड़े बंदे शुक्र अदा करते हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह कहने लगे कि एक बद्दू भी जो है ना मुझसे ज्यादा इल्म रखता है। तो सोचने का अंदाज है ना कि कैसे खूबसूरत अंदाज में वो आदमी कह रहा था कि अल्लाह तू मुझे अपने थोड़े लोगों में शामिल कर, और कौन कि तुम थोड़ा शुक्र अदा करते हो, और कुरान में और जगह भी है कि मेरे कम बंदे शुक्र अदा करते हैं, थोड़े बंदे शुक्र अदा करते हैं। फिर आगे दलाइल हैं कि वहुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्दी व इलैही तुहशरून, वही तो है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया। तो ज़ाल रा हमजा जो है ये जमीन में काश करना, जमीन में फैलाना, तो वही तो है जिसने तुम्हें जमीन में जो है वो फैलाया। व इलैही तुहशरून, और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है, यानी तुम उसी की तरफ समेटे जाओगे। तो उसने तुम्हें जमीन में पैदा किया और तुम उसी की तरफ जो है वो जमा किए जाओगे। वो अल्लज़ी युहयी व युमीतु, और वही तो है जो तुम्हें जिंदगी देता है और मौत देता है। वला हुख्तिलाफुल लैली वन नहार, और उसी के पास है ये गर्दिश, इख्तिलाफ गर्दिश, आना जाना, बदलना रात का और दिन का। अफला ताकिलून, क्या तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती? तो जिंदगी और मौत, रात और दिन, इसका जो हेर फेर है ये इस बात पर दलालत करता है कि लोगों दुनिया के बाद तुम अल्लाह के पास जो है वो हाजिर होगे, और अल्लाह तुम्हारे जो अमाल हैं उनके मुताबिक जो है वो तुमसे हिसाब किताब लेगा। तो यहाँ पर दलाइल दिए जा रहे हैं तौहीद और कयामत पर। अफला ताकिलून, क्या तुम लोगों को समझ नहीं आती? क्या तुम समझते नहीं हो कि जो रब ये कर सकता है तो तुम्हें भी जो है वो जिंदगी के बाद मौत देकर फिर तुमसे हिसाब किताब ले सकता है। बल कालू मिसला मा काल अल अव्वलून, मगर ये लोग वही कुछ कहते हैं जो इनके पहले लोग कह चुके। बल कालू, बल्कि इन्होंने कहा मिसला माने मा काला, जो कहा अल अव्वलून पहले लोगों ने। कालू वो कहने लगे आयजा मितना व कुन्ना तुराबा व इज़ामन आइन्ना लमबऊसून, कि जब हम मरकर मट्टी हो जाएंगे, मितना नीम वो तासे है, जब हम मर जाएंगे, व कुन्ना तुराबन, और हम हड्डियों का पंजर बनकर रह जाएंगे, व इज़ामन, और हड्डियां यानी गोश्त वगैरह सब खत्म हो जाएगा, आइन्ना लमबऊसून, तो फिर हमें जिंदा करके उठाया जाएगा। लकद वईदना नहनु व आबाउना हाजा मिन कब्लु इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, हमने ये वादे बहुत सुने थे। लकद वईदना, तहकीक हमसे वादा किया गया था, नहनु हमसे व आबाउना, और हमारे बाप दादा से भी हम यही बातें सुनते रहे, हाजा कि मरने के बाद फिर जिंदा किया जाएगा, हिसाब किताब होगा, मिन कब्लू इससे पहले भी, लेकिन हमने तो नहीं देखा कि किसी को जिंदा करके फिर हिसाब किताब लिया गया हो। इन हाजा नहीं है ये इल्ला मगर असातीरुल अव्वलीन, ये कहानियां हैं पहले लोगों की, अगले जमाने की। तो असातीर जो है ये सतर से है, सीन त्वा रा इसका रूट है, और इसके मानी है जैसे सतर होता है ना, जैसे किसी चीज को जो है वो लिखना। तो अब यहां पर जो है ये कहा जा रहा है कि ये तो बातें हैं पहले जमाने की। तो वो लोग क्या करते थे, वो कहते थे कि जो है वो बहुत अरसे से ये बात होती आई, हमें भी कही जा रही है और हमारे अबाओ अजदाद से भी यही कहा जाता रहा, लेकिन ऐसा होना जो है ये नामुमकिन है। तो असल में वो इनकार करते थे। कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए लिमन इल अर्दू, किसके लिए है जमीन, वमन फीहा, और जो इस जमीन पर आबादी है, यानी इनसे पूछो बताओ कि ये जमीन और इसकी सारी आबादी जो है वो किसके लिए है। इन कुन तुम तालमून, अगर तुम जानते हो। सयकूलून लिल्लाह, ان قریب یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے لیے قل افلا تذکرون، کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے جب تمہیں پتا ہے کہ زمین اللہ کی، زمین کی آبادی اللہ کی، یعنی ساری خدائی اللہ کی، تو لوگوں پھر تم جو ہے وہ ہوش میں کیوں نہیں آتے کہ اللہ جو ہے وہ سب کو مارنے کے بعد زندہ کرے گا اور حساب کتاب لے گا. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے رب سات آسمانوں کا اور عرش عظیم کا، تو سات آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پہلے کیا کہا؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اب کیا کہا؟ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہ جب تم مانتے ہو کہ یہ ساری خدائی اللہ کی ہے اور اللہ ہے جو عرش عظیم کا رب ہے، ساتوں آسمانوں کا، زمین کا، زمین کی آبادی کا، تو پھر لوگوں تم جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ یہ شرک کرنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو یہاں پر اصل میں اللہ کی خالقیت، مالکیت، حاکمیت، اس کے جو ہے وہ دلائل دیے جا رہے ہیں کہ اگر اللہ جب حاکم ہے، جب عرش عظیم کا مالک ہے، جب ساتوں آسمانوں کا، زمین اور زمین کی خدائی کا وہ رب ہے، اگر وہ تم پر عذاب نازل کر دے تو پھر تمہیں کون کون ہے جو اللہ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ تو افلا تتقون، پھر تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ قل من بیدہی ملکوت کل شیء وهو یجیرو ولا یجارو علیہ ان کنتم تعلمون. پھر فرمایا کہ کل کہہ دیجئے، من بیدہی کہ کس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت کل شیء، بادشاہی ہر چیز کی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بتاؤ کہ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا اقتدار، ہر چیز کی بادشاہی. وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ پناہ دیتا ہے. وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور نہیں پناہ دے سکتا اس پر، یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر ہو تم جانتے. تو جب اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، تو اگر تمہیں یہ بات پتا ہے کہ ساری بادشاہی اللہ کی ہے، تو لوگوں تم اللہ کی طرف جو ہے پھر رجوع کیوں نہیں کرتے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نافرمانی سے، شرک سے جو ہے وہ منع کیا ہے. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے لیے. قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ، پھر ان سے کہو کہ تم کو کہاں سے دھوکا لگتا ہے. تو سحرون، جیسے سحر سے ہے نا، کہ کہاں سے تمہیں جادو پڑھایا جا رہا ہے. بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بل آتیناہم بالحق، فرمایا کہ بلکہ جو ہے وہ دیا ہے ہم نے ان کو حق. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک البتہ یہ لوگ جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. اب دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بھی، آج کے سبق میں بھی، اللہ رب العزت نے ان آیات میں ایک ہی بات ہمارے سامنے رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں، کہ اللہ کی اطاعت کریں. اور اللہ کی اطاعت جو ہے وہ دماغ کی سوچوں میں، دل کی احساسات میں، اور پیٹ کے اندر کھانا ہے تو اس میں بھی، یعنی حلال، اور پھر دعائیں بھی، یعنی کچھ بھی عمل کر رہے ہیں تو سارے رسولوں نے ایک ہی بات کہی تھی، تو ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے، اور نیکیوں میں ہمیں سبقت لے جانے چاہیے. تو तो ये है जो असल पैगाम हमें यहाँ पे दिया जा रहा है, और हमें इसी की तरफ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और अल्लाह ताला मुझे और आपको बेहतरीन अमल करने वाला बनाए, और कुरान मजीद जो है इसे दोस्ती करने वाला बनाए, यानी हम कुरान के साथ वो सलूक ना करें जो अहले मक्का ने किया था। और अहले मक्का क्या करते थे कि वो कुरान का इनकार करते थे, वो فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی زندگی کا قرآن کو اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہے۔ کہا جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، کیونکہ جھوٹ سے مراد کیا ہے کہ یہ شرک کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے آخرت کا انکار کیا، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اور اب اس کے نتیجے میں جو ہے اب کیا ہے کہ یہ اللہ کی پکڑ کا جو ہے یہ شکار ہونے والے ہیں۔ تو پھر سوچ لیں کہ اب ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ یہ سچ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی ہم نے ان کو سچ پہنچا دیا لیکن افسوس کہ یہ لوگ جو ہے پھر بھی جھوٹے ہیں۔ تو آئیے ہم سچ بنے اور بہترین مسلمان بنے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔